हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 390 स्वीटी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही उसकी माँ आगे आते हुए आदित्य की बहुत ही ज्यादा चापलूसी करते हुए बोली, आदित्य बेटा, ये किस तरह से बात कर रहे हो? हम तो तुम्हारे चाचा चाची हैं ना, हम सब तो तुम्हारे अपने जान पहचान वाले हैं और तुम्हारा भला ही चाहते हैं। अभी तुम्हारी बीवी भी हमें इतना कुछ सुना कर गई और अब तुम भी, ऐसा क्या बिगाड़ा है भला हम लोगों ने तुम्हारा? आदित्य की बात का जवाब देते हुए बोला, कुछ बिगाड़ा नहीं है तो कुछ बनाया भी नहीं है चाची, इसीलिए मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। आप लोग अभी के अभी निकलिए सब यहाँ से, मुझे इतने सारे लोग और इतनी भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सफोकेशन हो रही है। इतना बोलते हुए आदित्य ने अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए शर्ट के ऊपर के दो बटन खोले और उन सब से थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो गया। उसे इस तरह का बिहेव करते देख उसके चाचा जी ने कहा, हाँ, यही सिखाया है ना हम लोगों ने तुम्हें, ये कैसे बर्ताव कर रहे हो? अब बड़े हो गए हो तो बड़ों की इज्जत करना और सारी तमीज़ भूल गए। मेरे भाई साहब जहाँ कहीं भी हैं, ये सब देखकर उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनका बेटा उनके सगे भाई के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है और उन्हें अपने घर से भगा रहा है। क्या सच में हम लोग इतने गिरे हुए हैं तुम्हारी नज़र में? चाचा जी की बात सुनता आदित्य बहुत ही ज़्यादा बोरियत से बोला, ओह प्लीज़ चाचा जी, मुझे ये सब इमोशनल ड्रामे में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए बंद करिए आप ये सब, क्योंकि आप सबकी असलियत में बहुत अच्छे से जानता हूँ। आदित्य ये बात तो बोला और वो आगे और भी कुछ बोलने वाला था कि तभी पीछे से उसे उस औरत की आवाज़ सुनाई दी जो कि अभी थोड़ी दूर पर हटकर खड़ी थी। आदित्य की बुआ जी ने आगे आते हुए कहा, हाँ, क्या असलियत जानता है तू? ऐसा क्या जान गया है और हमने क्या किया है ऐसा तेरे साथ जो हम इतने बुरे हो गए हैं? बताओ, अपने भाई के घर में भी मुझे आने से मना किया हुआ इस लड़के ने, पता नहीं है कौन सा भूत सवार है, ज़रूर उस लड़की ने ही ये सब कुछ सिखाया पढ़ाया होगा। उनकी बात सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, सुनैना का तो नाम भी मत लीजिएगा आप अपने मुँह से, आप में से कोई भी और कुछ उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आप लोगों को मेरी इससे भी ज़्यादा बुरी साइड देखने को मिलेगी, और सुनैना तो फिर भी मुझसे बहुत ज़्यादा भली इंसान है, इसीलिए यहाँ से चुपचाप चली गई, लेकिन मैं चुपचाप नहीं जाऊँगा, और फिलहाल आप सब निकलिए यहाँ से, क्योंकि ये मेरा घर है, आपके भाई का नहीं। आदित्य ने बुआ जी को सीधे ही जवाब देते हुए कहा, तो उसकी बात पर चाचा ने बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी से कहा, आदित्य बेटा, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बदल जाओगे। चाची भी अपने पति का साथ देते हुए बोली, हाँ, अच्छी तरह से तो तुम हमसे कभी भी पेश नहीं आए, लेकिन इतनी बुरी तरह से भी नहीं, और वैसे भी हम तो यहाँ तुम्हारी शादी की सालगिरह पर एक पूजा रखने के लिए इकट्ठा हुए थे, वहाँ बड़े वाले पुश्तैनी बंगले में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम। आदित्य ने तुरंत ही चाचा चाची की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, तो मेरी शादी की सालगिरह है, इस बारे में आप लोगों को इतनी चिंता क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसके पीछे भी आप लोगों का कोई मकसद होगा, नहीं तो आप जैसे मतलबी इंसान किसी को बिना फायदे के पानी तक ना पूछे तो फिर पूजा रखना तो बहुत बड़ी बात है। तभी विशाल उन सबके बीच में से निकलकर आगे आ गया और उसने अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, डैड, सच में आप लोगों के अंदर कितना पेशेंस है, ये कब से आप लोगों की और हम सबकी इंसल्ट किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी बेशरम की तरह यहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर आपको और अपनी बेइज्जती करवानी है तो शौक से करवाइए, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। इतना बोलकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। आदित्य या फिर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसकी माँ ने ही उसे एक बार आवाज़ लगाई, विशाल, विशाल बेटा, रुको, लेकिन उसने अपनी माँ की बात भी नहीं सुनी और घर से बाहर निकल गया। वहां से जाते हुए विशाल की तरफ देखकर आदित्य ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ये इसकी बेइज्जती कहाँ से हो गई, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, और उसे भला मैंने ऐसा क्या कह दिया? विशाल के बारे में ऐसा सुनकर आदित्य की चाची एकदम ही भड़कते हुए बोली, बस बस बहुत हो गया, तुमने हम सबको इतना बोल दिया लेकिन अपने बेटे के खिलाफ ना मैं एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगी, और आदित्य बहुत हो गया तुम्हारा, और आप? अपने पति की तरफ देखते हुए चाची ने कहा, और आप अभी तक यहाँ क्या खड़े हैं, बेशरम की तरह चलिए यहाँ से, और आप बाकी सब लोग भी हमें माफ करिएगा, हमने आप सबको यहाँ पर बुलाया लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा बर्ताव करेगा। इतना बोलकर चाची जी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर जाने लगी। बुआ जी ने भी मुंह मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, ये तो हमेशा से ही ऐसा है, इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन शादी के बाद से शायद कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गया है, और शादी के बाद से शायद कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव करने लगा है हम लोगों के साथ, चलो हमें भी अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं और कोई पूजा नहीं होगी। इतना बोलते हुए वो सभी वहां से बाहर की तरफ निकले, उसमें सुनैना के पेरेंट्स भी हैं। आदित्य ने उन्हें डायरेक्टली कुछ नहीं बोला लेकिन उनसे कोई बात भी नहीं की। तभी अरुण ने आगे आते हुए कहा, सॉरी जीजू, मैंने मम्मी पापा को यहाँ का एड्रेस बताया है, सॉरी, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये लोग। ये बात बोलते हुए अरुण बहुत ही ज्यादा गिल्ट में लग रहा है, तो आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इन लोगों को वैसे भी कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता, और मेरे चाचा चाची को तो पहले ही पता था। इतना बोलकर वो अपने मम्मी पापा के साथ वहां से बाहर निकल गया। लेकिन आदित्य के चाचा चाची अभी पूरी तरह घर के बाहर नहीं गए और दरवाजे पर रुक गए, तो उन्हें देखकर आदित्य की बुआ भी वहां पर रुक गए, और तभी आदित्य के चाचा ने कहा, ये सब कुछ तू जानबूझकर कर रहा है ना आदित्य, ताकि तुझे प्रॉपर्टी में हमें हिस्सा न देना पड़े, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझ गया, इसीलिए मैं अब कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगा और अपने हक के हिस्से शेयर कंपनी से वापस लेकर रहूंगा। आदित्य के चाचा ने बहुत ही मजबूती में इतनी बात कही और तुरंत ही बाहर से बाहर निकल गए। बुआ ने भी दरवाजे पर रुककर आंखें नचाते हुए कहा, मेरा भी जो हिस्सा बनता है अगर तू मुझे चुपचाप दे देगा तो फिर मैं कोई भी केस नहीं करूंगी। उन दोनों की बात सुनकर आदित्य ने कहा, कौन सा हिस्सा? ऐसा कौन हिस्सा है जो आपने कंपनी में कभी लगाया था या फिर आपने कंपनी के लिए ऐसा कुछ काम किया है जो आपका हिस्सा बनता हो? ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे पता है आप लोग चाहे कुछ भी कर लें, मेन मकसद आप लोगों का हमेशा मेरी प्रॉपर्टी पर ही नजर रहती है। मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ आप लोग को, इसीलिए मैं भी कह देता हूँ जो करना है कर लीजिए। आप लोगों को तो कुछ भी नहीं वाला क्योंकि आप कुछ भी मेरे नाम नहीं है और जब कुछ मेरे और मेरे पापा के नाम पर ही नहीं है तो उन चीजों में आपका कोई हिस्सा नहीं बनेगा। एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख लीजिए। इस बार आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात पर चाचा और चाची जी दोनों ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी चाची जी रुक गई और उन्होंने स्वीटी की तरफ देखते हुए कहा, तू क्या वहाँ पर खड़ी है, चल तू भी यहाँ से और अब बहुत हो गया तेरा फैशन डिजाइनिंग, अब चलकर तू अब हमारे साथ ही रहेगी।
स्वीटी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और गुस्से में अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई और एकदम परेशान होकर वो आदित्य की तरफ देखने लगी, इस उम्मीद में कि आदित्य उसे बचाने के लिए कुछ तो बोलेगा। लेकिन आदित्य ये चाहता था कि स्वीटी अपनी लाइफ का फैसला खुद ले। दोनों की तरफ अपनी माँ और आदित्य दोनों की तरफ देखते हुए स्वीटी उनके बीच में एकदम कन्फ्यूज से खड़ी है और आदित्य ने भी अब तक उसकी तरफ से कुछ नहीं बोला। लेकिन उसे पता है कि अगर वो वहाँ पर रुकने के लिए बोलेगी तो आदित्य उसे मना नहीं करेगा, इसीलिए उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, सॉरी मम्मी, लेकिन मैं अपना कोर्स कंप्लीट किए बिना वापस घर नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे पता है वहां से आप लोग मुझे इंस्टीट्यूट जाने नहीं देंगे। स्वीटी, इतनी हिम्मत तेरी कि तू अपने घर आने के लिए मना कर रही है और वो भी इस आदित्य के लिए? ये तो तेरा सगा भाई भी नहीं है, तेरे ताऊजी का लड़का है और ये हम लोगों को रत्ती बराबर भी नहीं कुछ समझता है। तुझे भी एक दिन इसी तरह घर से निकाल देगा, तब रोती हुई वापस घर आ जाना, तू हमारी बेटी है, घर के दरवाजे खुले हैं हमेशा। स्वीटी की माँ ने उसे ये सब कुछ कहा तो स्वीटी की आंखों में आंसू आ गए हैं और वो आदित्य की तरफ देखने लगी। वो सच में अपना कोर्स कंप्लीट किए बिना वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन आदित्य ने उसकी साइड लेते हुए कहा, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। और ये बात आदित्य ने बहुत ही मजबूती से कही, जिसे सुनकर स्वीटी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसे बहुत ही अच्छा सिक्योर फील हुआ। हाँ हाँ ठीक है देखते हैं, इतना बोलकर वो भी वहां से बाहर निकल गई और बुआ जी पहले ही जा चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले तक उतना भरा हुआ घर अब बहुत ही ज्यादा खाली लग रहा था। तभी आदित्य ने देखा तो टेबल पर काफी सारी नाश्ते की प्लेट सजी हुई थीं जो कि गीता ने उन लोगों के लिए नाश्ता पानी लगाया था और अब गीता वो सब कुछ समेटने के लिए वहां पर आ गई थी। और इस वक्त घर में स्वीटी, आदित्य और सुनैना के अलावा कोई भी नहीं था उन सबके चले जाने के। आदित्य, आदित्य ने स्वीटी से दरवाजा बंद करके आने के लिए कहा। स्वीटी देखो एक मिनट, सारे लोग चले गए हो तो दरवाजा बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कोई फिर से घर के अंदर आ जाए। स्वीटी दरवाजा बंद करके आई तो आदित्य उसकी तरफ आता हुआ बोला, तुम्हारी मम्मी चाची जी ने जो कुछ भी कहा उनकी बात पर ध्यान ना देना और मैं तुम्हारा भाई हूँ और इस बात को हमेशा याद रखना, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य की बात सुनकर स्वीटी ने कहा, आई नो, मुझे पता है भाई, मम्मी जो कुछ भी बोल रही थी ऐसा कुछ भी कभी नहीं होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। स्वीटी को उस पर इतना भरोसा था ये देखकर आदित्य को काफी अच्छा लगा और उसने हल्के से मुस्कुराया। क्रमशः कैसी लग रही है आप लोगों को ये स्टोरी और क्या सच में आदित्य के सारे रिश्तेदार लालची और मतलबी हैं और सब लालच में ही आज उसके घर आए थे या फिर कोई सच में उसका भला चाहता है? जानने के लिए आगे पढ़ते रहिए ये स्टोरी।